الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين خالق السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي بالقرآن بطه وياسين والمزمل والمدثر أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين ولتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدية على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم وقرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله and all praises to Allah subhanahu wa ta'ala that he gave us this opportunity to follow the best of his creations, that is the Muhammad wa Ali Muhammad alayhi salam. That with their presence and with their light, the entire universe is enlightened. When we say that all praises to Allah, it means that whatever we find to be praised, its credit goes to Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah is the creator of the entire universe, of each and everything. We are discussing about the how to save ourselves and our family from the fire of hell. Although there are lots of things to be discussed, but there are two ways to convey the message, or rather, is there two ways from which I can understand the different aspects through the Quranic verses and the supplications. There are two ways that these divine scriptures, they guide us, they guide mankind. From one side, they guide that how a child should perform, regardless that child is of age of 6, 7, 8 years, or that child is of age of 60, 70, 80 or 90 years. That is, our performance, our actions and our deeds towards our parents. There was time when a person is at the age of 6, 7, 8 years, there's a time of adolescence, the time when a person starts earning, at times he gets married, and again he becomes father, parent, and so on. But till that person himself or herself is in this world, that person has certain responsibility towards his or her parents. Regardless, that person's parents are alive or left this world for the next one. Till we ourselves are in this world, we have responsibilities and we have opportunities to avail, so we can save ourselves and our progeny from the fire of hell. And beside that, seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. To enter into this practicality of this aspect, we will discuss for these last 3-4 nights something, few words from the beautiful and eloquent dua of Imam Zainul Abidin alayhi salam. You must have read from Sahifa Sajjadiya dua, several duas has been mentioned. But remember, usually we recite duas, but duas are not meant to be recited. Duas are meant to be asked. Dua is not the recitation of certain verses in Arabic or reading it in English or some other native languages. It is a communication, it is a mode of communication between a creation and the creator. If, because we ourselves have very weak ma'rifah, we have very weak signals to be connected with Allah subhanahu wa ta'ala, so we associate ourselves with the strongest signals of the entire universe, that is the Quran and Ahlul Bayt alayhim as-salam. Because this Quran and Ahlul Bayt are Hablullahil Mateen. Because these are the Urwatul Wuthqa. This is the rope of Allah subhanahu wa ta'ala that a person should grab strongly to this Quran and Ahlul Bayt alayhim as-salam. So because our power of connectivity is very weak and at times signals are not coming that good, so what we do? Because we do not have that ma'rifah, we do not have that knowledge to understand, we do not have those words that how we should ask Allah. We want things. We want things from Allah. We would like to ask, but what to ask? How to ask? So what we do? We try to find out ways. And the strongest way and strongest mean, which is also in Quran mentioned, that a person should ask dua, perform dua. And Allah says in Quran, and those who do not perform dua, do not ask and request Allah subhanahu wa ta'ala, they have done a sinful act. Not asking and not performing duas makes a person arrogant. The result of not reciting and offering praise and asking Allah becomes arrogant. Why? Because I feel I do not need anything. I feel I do not need anything, so I do not ask Allah subhanahu wa ta'ala. Or I feel that Allah cannot fulfill my needs, so I do not ask Allah subhanahu wa ta'ala. But if you are asking, if you are offering prayers and making du'as, that means we are in need. And Allah subhanahu wa ta'ala is the one who can fulfill my needs. And that's how the relation develops. That's how the connectivity is over there. A person enters into the mosque, Masjidul Nabi, and saw people, some of them, a group of people offering salat, a group of people are offering, making du'as. That person asked the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, now those prayers were not the obligatory ones, the nawafil and mustahab and desire, recommended salats. So he asked, O Holy Prophet, which of these acts are better? Holy Prophet said, both of them are good. Again he repeated his question, which of these actions is better? Holy Prophet replied, both of them are good. Then again, for the third time, he asked, which of these actions is better than other? Holy Prophet say, asking Allah and making dua. Making dua. Connect yourself. And the Imam, just allow me to give you a little background of these duas. Many of you, of course, knows about it. But for my young friends, that these du'as are not just a medium to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. Beside, it helps us to find strong words and strong meanings to convey our inner desires and to ask Allah subhanahu wa ta'ala which actually is in our benefit. Besides that, du'as and supplications are the worthy mode of conveying the message of Allah, and also they are in our times one of the most effective ways to convey the pure teachings of Quran and Ahlul Bayt alayhimus salam. In the time of Imam Sajjad, we all know that it was very difficult, very challenging environment for him to give sermons like we are sitting over here, something like that. No, it wasn't allowed for him. It wasn't allowed for him. He was the surveillance of the government was so strong that even a tiny incident which used to occur in his house, the government used to get information about it. So they must have placed some slaves in his house. So news used to be conveyed from his house to the State Department or the how, whatever the department was there, intelligence department of that time. Imam Sajjad is Imam. When we say Imam, means leader. He's not the leader elected by us, selected by us, nominated by us. It has been made a leader to be followed by Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wa salam Muhammad wa alayhi. Imams alayhi salam, he used to convey the teachings or true teachings of Islam. If you remember the strong verses of Imam alayhi salam in Nahj al-Balagha, the ironic verses of Imam Hussain alayhi salam, what he said, I see the responsibility is great on me, the meaning of, not the exact translation I'm telling you, but the meaning of that, it's, I feel a great pressure on me, because I see the ma'aruf has been changed into munkar, and munkar has been changed into ma'aruf, that there is a clear shift of values and teachings of Islam, which been changed by people. Now it could be because of ignorance, and it could be because of arrogance. There are both sort of cases. There were people who unintentionally changed it because of lack of their knowledge. Because when you do not know something, when a person, a teacher cannot guide you, what happens? You solve your mathematical problems incorrectly. But not because of you, because of the lack of knowledge of your teacher. And at times, your friend would like to advise you something, he misguides you, because he don't want you to get 100 marks. So he guides you, he's intelligent than you, he guides you, no, you can solve this paper like this. Huh. It used to happen in our schools, maybe right now, the same thing. So we need to be very clever to understand that our friend is also trying to help us or trying to ditch us. So there's a clear shift. Now, one of the basic responsibility of divine leaders and the true and pure leaders of Islam is to revive the true values of Islam, to revive the true teachings of Quran and the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why even in this era, if you find maraji'een, our leaders, guiding not only their followers, but they guide other people of the world, that, oh people, where are you going? So you can see that resemblance, that learning, that these leaders who are not infallible leaders, but they are the followers of Ahlul Bayt and Quran, so they are following their footsteps by teaching the entire mankind, by being rahmah and blessing not only for their followers, not only for Muslims, rather for the entire mankind, to guide them, that keep yourself and your families and your societies from the fire of hell and the fire which has been arose in our times. We can see people, you go through the medias and you know. So Imams, one of the responsibility was that those values which has been shifted, has been changed in previous years, he should try to guide people so it can be conveyed, so people can understand that they are going on the wrong path. They can correct themselves, those who would like to be enlightened and guided. So Imam alayhi salam's one of his ways to guide people was his du'as and supplications. So don't think that Imam Sajjad did not perform anything because he was so much sick and ill. Yes, he was in the battlefield of Karbala, but not in his whole life. Even when he was in the battlefield of Karbala, what we recite in Masaib, that Hazrat Zainab came to him and asked his permission. Why? Because he was the Imam of that time. Ittaba, being a good follower, is important. Just saying Imam doesn't make you his follower. If you won't say, even if you take the example of the Imam of your mosque, you introduce a person, he is our Imam in our mosque. Okay, how many times you yourself offered prayers behind him? Oh, I don't have time. How much you follow his instructions and guidance? Oh, he talks something else, I cannot understand. So at times when it comes to us, we don't follow our Imams, our leaders. Hazrat Zainab teaching us, in what sort of scenario is the most challenging and stressful scenario, when people behind them, burning their tents, snatching their veils. Allahu Akbar. Hazrat Zainab, is this the time to ask, or you can decide yourself? Hazrat Zainab telling, no. When it comes to Islam, we need to ask. We must ask our Imam. And this is the lesson. When we say, what is the fazail of Hazrat Zainab? I see fazilat of Hazrat Zainab in this action, or in this her act. You can't find a common person performing this sort of act. There's something special. It was something special in Hazrat Zainab salamullah alayha. It was the way she was being the grooming and training in the house in which she was living. She wasn't an imam. She wasn't like Hazrat Fatima. She wasn't like that. But because she was the daughter of Ali ibn Abi Talib, she was the daughter of Hazrat Fatima salamullah alayha, she was the sister of Imam Hassan, Imam Hussain alayhi salam, she was the granddaughter of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We find her flawless character, even in that time of battlefield. When at times, even in today's war strategies, they allow a soldier in this critical time to decide himself. In that time, Hazrat Zainab said, no, Imam should lead. Somebody told me, we were just sitting informally, that Imam alayhi salam was too sick, too much ill at that time to give guidance. I said, if you have this opinion that he was sick and he wasn't able to guide, then don't have objection on qalam and kagaz. Imam, its leadership is not if he is sick or a deathbed, he would not be able to. Till he is in this world, he can guide, and whatsoever he has guided is a divine revelation. It is a divine guidance of Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why Hazrat Zainab, I know a little bit I have dragged it up more, but just wanted to make sure that we have learned this from Hazrat Zainab salamullah alayha. Kalir sa salat Muhammad wa alayhi wa sallam. Now, coming to this topic of how Hazrat Sajjad guided that society, we should relate to our topic of how to be a good children. Again, doesn't matter of 6 years, 7, 8 years, or you are 60, 70, 80, 90, and or in between them. This dua, which is the dua number 24, it could be made in different books a little bit. Like could be a number, could be changed. A placement of that because of the printer and publisher could be changed. But with me, it's dua number 24. Now, in dua, the foremost thing, although it's not the topic, but just to, because we are talking about the dua, the foremost thing is that it should be start with Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Anything should be, whatever we perform. You would like to, you are opening the door of your car, say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You would like to sit, you say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You open the door of your house, say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. You want to come out of your house, say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. And after that, whatever dua you would like to recite. Whatever you would like to start, say Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Another thing is to praise Allah and to ask the Salawat Muhammad wa alayhi. And to seek blessings for the Prophet and his progeny. And then we should enter what we would like to ask from Allah. In this dua, the foremost thing which has been asked from Allah subhanahu wa ta'ala, he says, اللهم صل على محمد وآله والحمني علم ما يجب لهما علي إلهاما. O Allah, provide me whatever knowledge is required to be kind and obedient for my parents. For whatever is required to know, so I could be obedient to them, respectful to them. Provide me with ilham. Give me its knowledge. Wajma li ilma dhalik kullihi tamaman. And give me each and everything which is required. The basic thing over here that we do not have the entire knowledge that how we should really be kind and respectful and obedient to our parents. Number one. Number two. To be kind and respectful and obedient to them, we need to seek guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. And number three. That We have to be respectful, kind and obedient to them as well. There are three things which I could learn. Okay? So first thing which I said in the last is that we should be. Now, if we should be obedient and respectful to them, we should have information and knowledge about it. If you do not have information, where to get it? From Allah subhanahu wa ta'ala. He will tell us. Now, over here, just in the beginning, there is a point to make. There are two types of norms in our society. I mentioned maybe in the first, on the day, first night, there are two types of norms. One is man-made and the other one is the divine one. We need to choose one of them. We cannot make a blend. Why we cannot make a blend of it? Because we will change its originality. As it was being changed in the time when Ahlul Bayt were not on their pulpit and they were not being given the administration of the Islamic and Muslim society. So it was being changed. There is a shift. So if we want to follow atheism, pluralism, different isms, okay, go for it. Then take it completely. And if you like to have Islam, and if you feel that a system which can help me, which can help us, which can help my family and my society to go in the right direction to achieve excellence in our lives, not only in this world, but the lives of hereafter, then we should be following it in a complete mode, not incompletely. If my intention is to come and reach this center, I drive and drive and drive. For example, it's 10 miles from your house to over here. You drive for 7 miles, then you say, okay, I have made my effort, now center should come over here. It's enough. People in Karbala, you are walking, walking and walking. There must be many, many people who must be tired. But nobody expected that the haram of Imam Hussein will come forward and close to them. They have to make sure that they should reach over there. So if we have identified the objective of being a perfect person and go towards the excellence, then we need to select a path and follow it till end. Till end that we reach over there, or the till end of our lives. So we can make sure that our directions are correct and that in the conclusion, in the end, we will reach over there. Because just walking in any direction would not make us reach to our destination. So we need to find, if it was like that, if we follow anything and everyone, and we could reach over there, then Quran could have been revealed on every one of us. If Allah can reveal Quran on one person, Allah can reveal Quran on every person. So why it was being revealed on one person? So all people and all the nations should follow that one person as a leader and imam and take him as a role model to follow him. And he was no one else other than the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. And for us to make it easier for the mankind, Holy Prophet appointed his successors, naming them 12 successors. So people can, in every era, they can follow those examples and role models. Can you recite Salat Muhammad wa Ali Muhammad? Now, number one, practically we need to find out what are the norms. At our home, there are ways you are living in a multi-ethnic society. People coming from different parts of the world, they have different ways to live. Now, if we start selecting ourselves without knowing its consequences, it is very much that we may end into something which was not be desired by Allah subhanahu wa ta'ala. So if our intention is to seek the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, then we need to find out the ways from the means and from the mediums through which Allah conveyed his message. That is the Quran and Ahlul Bayt. So we need to find out what Allah wants from us would not be taught by any person or any in school or college, anyone just reading a book, someone has written something and you can get it. No, you need to go through the right place. Then I skip few sentences. Then Imam alayhi salam says, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sharraftana bihi wa salli ala Muhammadin wa alihi kama awjabta lana al-haqqa ala al-khalqi bisababihi. Allahumma ajalni ahabahuma haybatu sultan al-usuf. Give me that respect that when I'm standing in front of my parents, how should I be behaving? How should I be behaving? Now this very, very small thing looks to be, but Imam alayhi salam has mentioned the way to respect. Say that, oh Allah, give me this tawfiq that when I am in front of my parent, I should feel as if I'm standing in front of a king. Take an example. In our times, you can say we are standing in front of a president or prime minister or someone like that. How we will be feeling inside? A little bit scared or something like, or giving that person very elevated place, although we do not agree, although we haven't voted for him, but still if we are meeting that person, again we will feel that his position is a lot elevated than mine. Why? But when we are in front of our parents, we do not have anything like that. Anything like that. Yes, when we are at the age of 8, 9, we have something in our heart like this. Oh, my father will come, he will scold this and that. And then we become at the age of 16, 17, 18, we become little ignorant and at times arrogant. And then we start earning. As we goes earning more and more, we become more and more ignorant to our parents, as if now we don't need them. That's it, finish. They have been cause of our birth. They have fed us. They have sent us to schools. Now I've got married. I'm earning, so I don't need my parents. So at times, children started feeling. Now I'm talking about the children of the age of 30, 35 years, 40 years or and above. Gradually they start feeling as if my parents are useless. Because I don't need them. I don't need them. So why should I keep them? When I don't need them, why should I keep them? Social security is over here. Just put them in a house. Or maybe in somewhere else in your native lands over there. Send them over there. Imam alayhi salam says, till your parent is alive. And you are at the age of 70 and they are maybe could be 100 or 95, something like that. They are your parents, remember. And if they say, even if you have become at that time grandfather or grandmother, and your parents say something to you, it becomes an obligation for you. We don't care. We do not think about it. Now, you can say there could be a 3-4 generations. Respect should come from up to down and from here to there. That we should be, the 70-year-old child should be an example for his own child, which could be of 35, 40 years, and he should be example for his child that how to behave and interact with your parents. This is how Imam is telling, that the relationship should be there. A connectivity should be there. In the hadith from the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے ماں باپ تم سے اپنی ضرورتوں کا اظہار کریں ان کی ضرورتوں کو پورا کر دو. اس لیے کہ وہ اب شرماتے ہیں کہ تم سے مانگے, یعنی جن کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے, اب وہ ان سے مانگتے ہوئے کہ مجھے لباس چاہیے, دوا چاہیے, فلان چیز چاہیے, فلان چیز چاہیے, ٹوتھ پیسٹ لا دو, وہ فلان ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ, اس سے پہلے کہ وہ مانگیں. اچھا چلے, یہ حدیث تو آ گئی. یہ مجھے پتا کیسے لے گا بھائی, مجھ پہ وہی تھوڑی نازل ہو رہی ہے, مجھے کیسے پتا لگا کہ میری ماں کو میرے باپ کو کسی کی ضرورت ہے. وہ یہی تو فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیوں پتا نہیں ہے بھائی, کیوں معلوم نہیں ہے. اس لیے معلوم نہیں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اگر ماں باپ میرے ساتھ بھی رہتے ہیں تو کہتا ہوں السلام علیکم, خیریت سے, ہاں ٹھیک ہے, بس چلے گئے. بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, پوچھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. وہ بھی دیکھتے کہ بچہ میرا تھکا ہوا آیا ہے, ابھی میں کیا اپنی ضرورت کا بولوں. وہ اسی طرح سے ایک دن, دو دن, ہفتہ بھر, 15 دن, مہینہ گزار دیتے ہیں. پھر بڑا جب سیریس کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں ہے, یہ ریلیشن کیوں نہیں ہے, کیوں کنیکشن نہیں ہے. یعنی کیوں میں جب جاؤں تو پوچھوں نہیں کہ بھائی امی آپ نے بہت عرصے سے لباس نہیں بنایا ہے, کوئی بنانا نہیں ہے کیا, سردی آ رہی ہے, کچھ خریدنا نہیں ہے آپ کو. پھر وہ کہیں گے نہیں بھائی میں نے 4 سال پہلے لیا تھا, بس وہ چل رہا ہے. تو آپ کو بھی احساس ہوگا 4 سال سے آپ نے کچھ دلایا نہیں ہے. یہ ہمارے لیے ایک چیز ہے سیکھنے کی, جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں نا, یہ جو ویلیوز آج آپ, میں تو 1400 سال پہلے کی دعا بیان کر رہا ہوں, یہ آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ آپ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ امام صرف 1400 سال پہلے والوں کا امام نہیں ہے, یہ آج کے زمانے کے لیے بھی ہمارا امام اور رہبر اور قائد اور رہے. یہی ہے ان آئمہ کی ڈیوینٹی اور تقدس, کہ ان کا حرف زمان اور مکان میں محدود نہیں رہتا ہے, یہ محیط ہوتا ہے, زمان و مکان پر محیط ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اللہ کی حجت ہے, اللہ کی دلیل ہے. اللہ کی دلیل زمان اور مکان میں محدود نہیں رہتی ہے. کہ بھائی یہ تو 1400 سال پہلے گئے تھے, 1200 سال پہلے گئے تھے, نہیں, یہ کلام دائمی ہے. جب تک قیامت کا دن نہیں آتا یہ انسان کے لیے باعث ہدایت ہے, باعث رہنمائی ہے. یہ کیوں آج ہمیں جب والدین کے پاس جاتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, नहीं मालूम होता, हदीस में है कि भाई पता होना चाहिए, हमारा रिलेशन नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जो आज के जमाने में हम कहते हैं, देयर इज अ कम्युनिकेशन गैप. इमाम इज टेलिंग अस, बता रहे हैं कि इस कम्युनिकेशन गैप को जन्म ना लेने दो. कम्युनिकेशन होना चाहिए हर जनरेशन में दूसरे जनरेशन के साथ, ताकि तुम एक दूसरे को समझो. इंशाल्लाह आगे और चीजें हम आएंगी कि जो उस पर इन्फोर्स करेंगी. जो आज की दुनिया समझी है ना कि कम्युनिकेशन होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, ये 1400 साल बोला है. अगर हम वाकई इनको पढ़ लेते, समझ लेते, तो आज के इन साइंसदानों से हम बहुत आगे निकल चुके होते. ये इन्हितात पैदा ही इसीलिए हुआ है, ये पस्ती, ये गिरावट आई इसीलिए है कि हमने कुरान और अहले बैत को सिर्फ सजा के रखा अलमारियों में और टुकड़ों के तौर पे ऊपर, लेकिन अपने वजूद में तारीखी ही तारीखी रख करके रखी. अपने वजूद के दरीचों को, अपने अफकार के दरीचों को हमने बंद रखा. अगर इस नूर को अपने वजूद में बसा लेते तो तारीकी कहीं नहीं मिलती, इसलिए कि कुरान भी नूर है, अहले बैत भी नूर है, और यह जब हमारे वजूद में आ जाए तो मुमकिन नहीं कि जुल्मत और तारीकी नजर आए. जरूरी है कि हमारे ये राबता, ये हम कहते हैं ना, हम ये दुआ हमने पढ़ी होगी बहुत सी दफा अपने वालदेन के हक के लिए, पढ़नी भी चाहिए हमें, लेकिन इसको बैठ के सोचें कि ये क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में जो किताबें उलमा ने तशरी की है. ये जो किताबें होती है ना उलमा की, जरूरी नहीं कि बस जो लिख दिया वही है. ये दर हकीकत इंसान के फिक्र के जो बंद दरीचे होते हैं उसको खोलता है, उसे जैसे कहते हैं कि फूड फॉर थॉट होती हैं वो सारी चीजें, कि इंसान सोचे. और आज हमारी गुफ्तगू भी यही है, हम कह रहे हैं सोचें कि अगर हम पीछे रह गए हैं इन वैल्यूज से कि जो हमारे आइमा अलैहिस्सलाम ने हमें दी हैं, जिन वैल्यूज के लिए, जिनके अहया के लिए, जिनको जिंदा करने के लिए, जिसके रिवाइवल के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कुर्बानियां दी. किस लिए दी कुर्बानी? भाई चल रहा था, चलने देते हुकूमत. अगर इमाम एक जगह अपने खुतबे में फरमा रहे हैं निकलते हुए कि मैं किसी मुल्क को मनाल के लिए नहीं गया हूं, फिर भी जा रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, और मुस्लिम को भी भेज रहे हैं कि जाओ देखो वहां पर हमारी लीडरशिप के लिए कूफा तैयार है या नहीं है, जो दावतें दे रहे हैं सच्ची है नहीं है. ठीक है, एक तरफ से कह रहे हैं कि हम नहीं जा रहे, दूसरी तरफ से जा रहे हैं कि तजाद है. नहीं, तजाद नहीं है, बताना ये चाहते हैं कि मुल्क को, हुकूमत को सिर्फ हुकूमत के लिए कि हमारी हाकिमियत हो जाए, वो हमारी बात सुने, ये हमारी बात सुने, जो जहां पर हम दिल चाहे वो करे. नहीं, इनको क्योंकि परवरदिगार ने रहबर बनाया, जिम्मेदारी है तो उस बात को पहुंचा सके और उसका इजरा हो सके, इंप्लीमेंटेशन हो सके उन लॉज का, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस का, कि जो कुरान और रसूलुल्लाह की तालीमात में आई है. वरना क्या क्या काम था? मुझे बताएं क्यों कुर्बानियां दी, क्यों ये जहमतें बर्दाश्त की, क्या जरूरत थी बताएं. आप ये बताएं कौन सी उन्होंने, आप तारीख उठाकर देख ले, असहाब थे लेकिन कोई मुनज्जम, जिसे कहते हैं कि कोई पार्टीजन बना लिया हो, कोई एक ग्रुप बना लिया हो, नजर नहीं आता हमें. उमूमी रहनुमाई है, उमूमी रहनुमाई है सबकी, और आज तक के लिए है अफराद के लिए, कि जो उसको समझे सीखे वो आ सकता है. हमने महदूद कर दिया, सिर्फ आइमा अलैहिस्सलाम को इमाम बारगाहों तक. इमाम बारगाह बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से चीज है कि हम स्कूल में पढ़ें और कहें कि भाई ये जो हमने स्कूल में पढ़ा है ना, ये स्कूल के अंदर ही बातें करने वाली हैं, बाहर जाके उसी तरह जाहिलों की तरह बातें करना, उसी तरह गवारों की तरह बातें करना. भाई यहां पढ़ तो लिया हमने, ठीक है, हमने मेडिकल कॉलेज में पढ़ लिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ लिया है, लेकिन हम जब किसी का इलाज करेंगे तो अपनी मर्जी से करेंगे, किताबों में ये तो यहां की बातें है भाई. हम जब कोई जगह इंजीनियरिंग करेंगे तो अपनी तरफ से उसके ठीक करेंगे। तो भाई यहां स्कूल में क्यों पढ़ा? ये स्कूल ने पढ़ा, स्कूल में पढ़ने के लिए। तो आप कहेंगे कहीं कोई लॉजिकल बात है भाई? ये जो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो अपनी अमली जिंदगी में बताने के लिए, दिखाने के लिए है, उस तरह से चलने के लिए है, ताकि हम अपनी जिंदगी को भी संवार सकें और दूसरों की जिंदगी को भी संवार सकें। लेकिन जब हम दीन के बारे में आते हैं तो कहा कुरान को महदूद कर लो मस्जिद इमाम बारगाह में, अहले बैत की तालीमात को महदूद कर दो मस्जिद इमाम बारगाह में, इसके बाहर कोई अमल नहीं करना, बस यहां तक महदूद कर दो। तो भाई पर इतनी जहमत करने की क्या जरूरत है? बस एक यहां पर तावीज लगा दो, या अली मदद काफी है, चलते रहो। या अली भी उन्हीं की मदद करता है जो उनसे मदद मांगते हैं, ठीक है? जब मदद मांगी तो मना भी नहीं करते, ठीक है? इसीलिए कहा लौला अली, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। भाई मांगी तो मदद भी की, तो जो इन्हें मांगी तो मदद की क्या मकसद है? यानी जो तरीकेकार मौलाए कायनात ने समझाया कि इस तरह से तुम फैसला करो, उसके मुताबिक फैसला किया तो फिर नतीजा सही निकला। अगर हम भी अली से मदद मांगना चाहते हैं तो अली के रास्ते को समझे और जिस तरह से उन्होंने बताया उस तरह से अंजाम देंगे तो नतीजा सही निकलेगा। अक्सर कहते रहता ना, हलवा हलवा करदन दहान शीरीन नमी शबाद। हलवा हलवा करने से मुंह मीठा नहीं होता है, ठीक है? वरना हमें वो यही कहते जब हम यहाँ आकर बैठे थे यहाँ पर मूसा भाई के, मौलाना हलवा खाएंगे, हलवा खाएंगे, खा लिया आपने हलवा? नहीं भाई, वो लेकर आए हमारे लिए कि हम हलवा खा सकें। क्यों? इसलिए कि जब तक खाएंगे नहीं मिठास कैसे आएगी? तो भाई जिस तरह से जब इन कुरान की तालीमात और अहले बैत की तालीमात की मिठास अगर हासिल करनी है तो उनको समझें, पढ़ें इन दुआओं को, इन मजमुए को। ये जो बीमार करबला की मजलूमियत हम देखते हैं, अल्लाहु अकबर, कम से कम अगर उनको इतना हम सुनते हैं इनकी मजलूमियत को, इन्हें इमाम सज्जाद की मजलूमियत को जितना बयान किया करूं कम है, कर नहीं सकते, यानी हम उस चीज को दर्क नहीं कर सकते। यानी मैं इमाम की मजलूमियत को अगर आमतौर पे जो शुरू करते हैं उलमा बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन की शहादत हो गई और इमाम बस्तर पे थे, मैं थोड़ा पहले से इमाम की मजलूमियत को बयान करता हूं। कहां से मैं बयान करता हूं? यानी मैं ये समझता हूं कि एक नौजवान के लिए कि जब उसका बाप आवाज दे रहा हो हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुगीथिन यगीथुना, हल मिन ज़ाबिन अनहरम रसूलिल्लाह, है कोई मदद करने वाला, है कोई नुसरत करने वाला, है कोई इन नबी जादियों की हिफाजत करने वाला, तो मेरे मौला सैयदुस्साजिदीन अपने बस्तर अलालत से उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते, उठना चाहते हैं, उठ नहीं पाते हैं। अल्लाहु अकबर, मैं कहूं एक नौजवान के लिए कितना सख्त है कि बूढ़ा बाप मदद के लिए पुकार रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदुस्साजिदीन किस मजलूमियत से कि जब लाशों को पामाल किया गया होगा, जब लाशों का पामाल किया गया होगा, हाँ ये सुना है ना आपने वाकया, ये वाकया सुना है कि जब पामाल लाशें हुए, जमा किए गए लाशों को, तो शायद उम्मीद बंद चली होगी कि जिस तरह से दुश्मन ने अपने मुर्दा लाशों को रखा, उन पे नमाज पढ़ी, तो शायद अब ये आले रसूल पर, नवासे रसूल पर भी नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उस जवान पर क्या गुजरी कि जब मशरिक के घोड़े मगरिब की जानेब, मगरिब के घोड़े मशरिक के दाने, और बाबा का लाशा पामाल हो गया। अल्लाहु अकबर, अजरुकुमल अल्लाह। सैयदु साजदीन, हाँ चेहलुम है, चेहलुम। चेहलुम में किसके मसाइब हैं? चेहलुम में मसाइब ही मसाइब हैं। सैयद साजदीन के मसाइब हैं, जनाब ज़ैनब के मसाइब हैं, जनाब सकीना के मसाइब हैं, जनाब इमाम हुसैन के मसाइब हैं। अल्लाहु अकबर, खानदान रसूल के मसाइब हैं। जिस बीबी का नाम लो, एक मसाइब की वहां के कहानी शुरू हो जाती। अल्लाहु अकबर, मुसीबत ही मुसीबत है। किस तकलीफ में गुजरे हैं ये सैयद साजदीन, किस मुश्किल से, किस मुश्किल से शाम और कूफे के बाजार से गुजरे होंगे। आप समझ रहे हैं कि सैयद साजदीन की तकलीफ क्यों मैं कह रहा हूं कि जंजीरों में जकड़े हुए थे, तौक डाला हुआ था, पैर में बेड़ियां थी, इसलिए तकलीफ हुई? नहीं, सैयद साजिदीन फरमाते हैं, इमाम सज्जाद फरमाते नहीं, मेरी तकलीफ तौक की वजह से नहीं थी, बेड़ियों की वजह से नहीं थी, जंजीरों में जकड़े जाने की वजह से तकलीफ नहीं थी। हाँ, यही तो साहबी ने पूछा, मौला सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ हुई? कहा शाम, अशाम, अशाम। अरे हाय शाम, हाय शाम, हाय शाम। कहा मौला, मौला आपने बाबा का सर जुदा हुआ, आपने तकलीफ का जिक्र नहीं किया, लाशा पामाल हुआ, तकलीफ का जिक्र नहीं किया, आपको पाप प्यादा करबला से कूफा और कूफा से शाम ले गए, जंजीरों में जकड़े हुए, आपने तकलीफ का बयान नहीं किया। ये शाम में कौन सी तकलीफ हुई, शाम में कौन सी तकलीफ हुई? फरमाया मेरे लिए नबी जादियों का बरहना सार, अरे बाजार और दरबार में देखा नहीं गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैं कहूं सज्जाद, सज्जाद अब तो आपको टूट जाना चाहिए था, अब तो आपको खत्म हो जाना चाहिए था, इसलिए कि इतनी मजलूमियत, इतनी मजलूमियत कि जनाब ज़ैनब दरबारी अजी ने फरमाती हैं, हमें ऐसे लेकर आए हो कि जैसे कोई तुर्क अफगान के असीर लाए जाते हैं। अरे हम नबी ज़ादिया है, हम नबी ज़ादिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बस वो चंद जुमले सुनते जाएं इस बीमार करबला के, इस शिकस्ता इंसान के जो मसाइब के बोझ तले दब चुका था। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये इमाम हुमाम, ये इमाम जो अली का पोता है, ये इमाम जो नस्ल नबी से है, हुसैन का लाल है, लख्ते जिगर है। अल्लाहु अकबर। अरे जब यजीद ने कहा, अरे दरबार में तो कुछ ही लोग हैं, आओ चलो मस्जिद में ले जाकर अवाम को तमाशा दिखाएं, मैं कहूं शायद यही यजीद का सबसे सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, सबसे बड़ी गलती थी, इन असीरा ने करबला को मस्जिद शाम में ले जाया गया, मस्जिद शाम में ले जाया गया। हाँ, कहा खतीब से, कहा खुतबा दो और लान तान करो अली और औलाद अली के ऊपर। उसने लान तान शुरू कर दी, लान तान शुरू कर दी। सज्जाद एक मकाम पर आकर फरमाते हैं, बस कर खतीब, बस कर, तुझे नहीं मालूम कि तू क्या कह रहा है। यजीद से कहते हैं, मुझे भी इजाजत दो कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर जमा हो जाऊं। अल्लाहु अकबर।
मेंबर नहीं कहते, कहा लकड़ी का ढेर, इसलिए कि अगर मेंबर पर ना हक बैठा हो तो फिर वो मेंबर रसूल नहीं है, वो मेंबर रसूल नहीं है, वो लकड़ियों का एक ढेर है। अल्लाहु अकबर। यजीद मना करता है, यजीद का बेटा कहता है, लोग इसरार करते हैं, सैयदु साजिदीन के जो बीमार करबला भी है, जो अभी इन तमाम असीर बीबियों के साथ है, इन यतीम बच्चों के साथ है, उनका सहारा है, कोई भी ऐसी बात करने से सज्जाद का सर कलम किया जा सकता है। हाँ, मैदान में बीमार है, वहां तलवार जनी की इजाजत नहीं थी, लेकिन इमाम इमाम है, जुर्अत का मजहर है, शुजाअत का पैकर है, अली का पोता है, बतला दिया कि मैं कौन हूं। यही तो आकर बतलाना चाहते थे। मेंबर पर पहुंचे, मेंबर पर पहुंचे, अरे लोगों लोगों, तुम्हें पता है कि हमें फजीलतें दी गई है, इल्म हमें दिया, हिल्म हमें दिया, सखावत हमें दी, शुजात हमें दी, अरे हम नबी हमारे खानदान से है, अमीरुल मोमिनीन हमारे खानदान से है, अरे हमजा हमारे खानदान से है, जाफर तैयार हमारे खानदान से है। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फरमाते हैं, मन अर्रफनी फकद अर्रफनी व मन लम यारफनी, अगर तुम अभी नहीं पहचाने कि मैं कौन हूं तो मैं पहचानवाता हूं, अरे मैं मक्का और मिना का फर्जंद हूं, मैं सफा और जमजम का फर्जंद हूं, अरे मैं उसका फर्जंद हूं जिसे काबे कौसैन तक ले जाया गया। अल्लाहु अकबर। मैं उसका फर्जंद हूं जिसे मेराज पर ले जाया गया, मैं उसका फर्जंद हूं जो बद्र हुनैन में आगे आगे लड़ा, मैं उसका फर्जंद हूं जिसे शत्ते फुरात पर प्यासा शहीद किया गया, अरे मैं उसका फर्जंद हूं जिसका सर उसके बदन से जुदा किया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, बस मैं कल के मसाइब से जोड़ता चलूं, कल के मसाइब से जोड़ता चलूं, अरे सरे सरे अकदस हुसैन वापस मिला, वापस मिला, अब यहां पर शाम से कूच करना है, कूच करना है, एक तरफ मदीने की मोहब्बत है और एक तरफ शाम में, अरे सज्जाद का, ज़ैनब का जिगर टुकड़ा, अरे वहां पर रह गया। मैं कहूं एक तरफ से कह रहे अलविदा सकीना, अलविदा सकीना, अलविदा बेटी, खुदा हाफिज, तुम्हें अमान में दिया परवरदिगार के। अल्लाहु अकबर। नहीं मालूम किस कैफियत से जनाब ज़ैनब ने और सैयद सज्जाद ने विदा किया होगा, तारीख में नहीं मिलता है, लेकिन हुसैन की प्यारी, हुसैन की दुलारी को अरे जिंदान में दफन करके अब जा रहे हैं, सकीना तन्हा रह जाएगी। अरे मैं कहूं शायद उन्हें भी मालूम था कि एक दिन आएगा, एक दिन आएगा कि तन्हा ना होगी, आशिकाने आशिकाने रसूल आले रसूल जनाबे सकीना की जियारत के लिए पहुंचा करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, अमारियां बुलाई गई, अमारियां बुलाई गई, अमारियों को देखा, मखमली मखमरी अमारियां हैं, इस पर अल्लाहु अकबर महमिल रखे गए हैं, सुर्ख सुर्ख लस पे कपड़ा है। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने देखा, कहा सज्जाद सज्जाद हम लुटे हुए हैं, सज्जाद हम गमजदा है, हम इन सुर्ख अमारियों पर बैठ कर नहीं जा सकते हैं। अरे यजीद से कहो, कहो इसे सियापोश कर दिया जाए, अरे सारे महामिल को, सारी अमारियों को सियापोश कर दिया गया, सियापोश कर दिया गया। नहीं मालूम जब अमारी में सवार होने का वक्त आया होगा तो शायद ज़ैनब को मदीना याद आया होगा कि जब मदीने में जब आ रहे थे, मदीने में जब अमारी पर सवार होने जा रही थी, तो एक जानिब से भाई अब्बास आ गया था, दूसरी जानिब से शबीर रसूल अली अकबर आ गया था। अल्लाहु अकबर। शायद शायद ज़ैनब ने दाएं बाएं जब देखा होगा, सैयद साजिदीन लपक कर गए, पुपी अम्मा अगर चचा अब्बास नहीं तो किया, मेरा भाई अली अकबर नहीं तो किया, मैं तो मौजूद खुद हूं, आए मैं आपको सवार करूं, आए मैं सवार करूं। अरे शाम से ये काफला आगे बढ़ा, शाम से काफला आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, इराक से गुजरा था, गुजर रहा था। जनाब ज़ैनब ने कुबरा अकीले बनी हाशिम ने फरमाया, या दलील मुर्न बिकरबला, ए रहनुमाए काफला हमें करबला से लेकर चल, रहनुमाए काफला हमें करबला से लेकर चल। मौरखीन बयान करते हैं ये काफला बी सफरुल मुजफ्फर को करबला की सरजमीन पर पहुंचा। अब मालूम है कि क्या हुआ, आपको मालूम है कि क्या हुआ, जैसे ही जनाबे जैनब की हमारी कब्र हुसैन के पास पहुंची, जनाबे जनाब ने जैनब ने इंतजार न किया कि ये उठनी बैठ जाए, अरे अपने आप को हुसैन की कब्र पे गिराया, कहा भैया तुम्हारे बात लुट गए, अरे चादरे चिन गई, अरे चमच, अरे ताजियाने पड़े, अरे हमें शहर पर शहर ले जाया गया, भैया अरे ये कहा होगा, अरे ये कहा होगा, दर्द दिल किया होगा, छोटी बहन ने अपने भाई के सामने दर्द दिल किया होगा, कहा होगा भैया तुम्हारी दुलारी को हम शाम में छोड़ा है। अल्लाह अकबर। हाँ उसी दिन इमाम हुसैन के पहले जाहिर अबू बसीर भी पहुंचते हैं। जरा इस मुसीबत को, हाँ आज थोड़ा तुलानी हो गया है, मुसीबत को सुनते जाए, मुसीबत अबा अब्दुल्लाह हुसैन को सुनते जाए। अबू बसीर के जो पहले जाहिर है, पहले जाहिर है यानी इन काफले से, इन असीरों के काफले से पहले वहां पहुंचे थे। जब वहां पहुंचे नाबीना थे, नजर नहीं आता था, अल्लाहु अकबर। जब वहां पहुंचे तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले फुरात के पानी में गुस्ल किया। मैं को अबू बसीर जिस पानी में तुम गुस्ल कर रहे हो उसकी बूंद बूंद के लिए खयाम हुसैनी में मौजूद बच्चे अलता जलत करते रहे। अजरकुम अल्लाह, गुस्ल किया, नमाज पढ़ी और मेरे मौला हुसैन की कब्र पे गए, फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। चंद मर्तबा इस सलाम को दोहराया। मैं कहो अबू बसीर क्यों बार बार दोहरा रहे हो, तो जवाब आया अरे हबीबुल्ला युजाब हबीबा, अरे हुसैन से दोस्त थे ना, बचपन के दोस्त थे। अबू बसीर ने कहा ए हुसैन क्या एक दोस्त दूसरे दोस्त के सलाम का जवाब ना देगा। अल्लाहु अकबर। अरे खुद ही सलाम कर रहे हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर। खुद ही सवाल करते हैं कि क्या जवाब नहीं दोगे हुसैन, फिर पलट के जवाब देते, हाँ हुसैन अरे तुम कैसे जवाब दोगे, अरे तुम्हारा लाचा तो अरे बेसर है, किस तरह से जवाब दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। इन असीरों का काफिला पहुंचता है, सैयद साजिदीन आते हैं, अबू बसीर से मिलते हैं, अरे किस तरह से मिलते हैं, अबू बसीर सज्जाद को अपनी बाहों में लेते हैं, पुरसा देते हैं, अरे मातम करते हैं। अल्लाहु अकबर। तीन शब रोज अरे करबला में आजादारी की, अरे नहीं मालूम, अरे कभी हुसैनी कब्र पर बैठते होंगे, कभी अली अकबर की कब्र पर बैठते होंगे, कभी अली असगर की कब्र पे बैठते होंगे, कभी अब्बास के कटे हुए बाजुओं के पास जाकर फुर्सत। ارے کبھی عباس کے لاشے پر قبر میں بیٹھتے ہوں گے, کبھی شہدا کی قبروں پہ, ارے پرسا دیتے رہے تین شب روز, پرسا دیتے رہے. میں کہوں بس میں اپنے مولا امام زمانہ کے مرثیے کو بیان کروں, اللہ اکبر, میرے مولا پردے غیبت میں, پردے غیبت میں مرثیہ کنان ہے, فرماتے میرا سلام, میرا سلام کربلا میں بہتے ہوئے خون پر, میرا سلام خشک ہوٹوں پر, میرا سلام, میرا سلام برویدہ حلقوم پر, میرا سلام خاک اور خون میں غلطا لاشوں پر, میرا سلام جلتے ہوئے خیموں پر, میرا سلام نوک نیزہ پر بلند سروں پر, جنہیں شہر بشہر گمایا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.